देश विदेश की लोक कथाएं।
उत्तर प्रदेश के ब्रज की लोक कथा, सिंघल द्वीप की पद्मिनी। वाचक स्वर राधा पाठक।
किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थी। एक रात को वो परियां उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वो एक राजा के महल की छत पर से गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह उस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर ले जाया जाए, परंतु उसे पृथ्वीलोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वो राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसके साथ वाली परियों ने अपनी रानी की हालत समझ ली। वो मजाक करते हुए बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चले, अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यहीं ले आएंगे। परी रानी मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करते हुए अपने देश को लौट आईं। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसका शरीर में बड़ी ताजगी थी। वो सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुंदर को लांग जाऊं। तभी वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी ख़राब है, वो आखिरी सांसें ले रहा है। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वो तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा, वजीर साहब अब तुम्हारे पिता के समान है, तुम सदा उनकी बात का ख्याल रख। इतना कहते कहते राजा ने आंखें मूंद ली। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगे और राजा की मृत्यु पर सारे नगर में शोक मनाया गया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञा अनुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बगैर नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर फिर भी राजी ना हुआ। वजीर का लड़का भी उसके साथ था। वो राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें क्यों रोकते हैं? वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो राजा को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं, उनकी बात मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाज़ा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी तो शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज़्यादा जिद करना ठीक नहीं समझा और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुँचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे। फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थी। अचानक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा, ये किसकी है? वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना पड़ा कि वह सिंघल द्वीप की पद्मिनी है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उस दिन उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूंगा, जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी मैं राजपाट में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंघल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है, वो सात समुंदर पार है, वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उनसे मिलना भी असंभव है। उनकी तलाश में जो भी गया लौट कर नहीं आया, फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुंचे, अपने अपने घोड़े खोल दिए, हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया, थके हुए तो थे ही, चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर में गहरी नींद आ गई। आंख खुली तो चलने का ख्याल आया। देखते क्या है कि बाग का जो फाटक है वो बंद हो गया है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक परी पकड़े हुए थी। उस पर रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वो देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए दो आदमी सो रहे हैं, उनमें से एक वही राजकुमार है, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वो परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया, बोला, परी रानी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सिंगल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ, इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंगल द्वीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुँच संभव नहीं है, वह दैवीय शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम उससे विवाह कर लोगे, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिससे सिंगल द्वीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, बोला, परी रानी मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी इस बात में कोई हेरफेर नहीं होगा। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी, राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, ये अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर न करेगी, इसके पास न रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना भी नहीं चल सकता। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वो इतना तेज चला कि वजीर का लड़का भी उसे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां पर हर दरवाजे पर तलवारें लटकी हुई थी। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़े जोर से प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों में दिखाई दिया, तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, भूल गया अपनी बुआ को। ये कहते हुए उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। उसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते हुए बहुत दिन हो गए। अंत में उसे उपाय सूझा, वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा, रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसे चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 यूजन की दूरी पर एक जंगल है, उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है, उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी की सारी जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार पर चिपका रखा है। वजीर ने पूछा कि मैं इतनी दूर कैसे पहुंच सकता हूँ। परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी, कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें यह भी खूबी है कि तुम सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा, तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते को मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची, राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह दिया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए, रात भर के लिए एक सराय में रुके। राजकुमार सो रहा था, उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे, यकायक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इस सोच में हूँ कि सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं। पार्वती जी ने नीचे सोए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी को ये युक्ति जच गई, उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। उसे तो राजकुमारी सिंघलदीप से शादी करनी थी, सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मिनी से शादी करनी थी। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, इस समय तुम मुझे जाने दो, उसने ऐसा राजकुमारी से कहा। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास था, उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफ़ेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला दैत्य प्रकट हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ, राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिंघलदीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया, बाल जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के सामने आ गया। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वो जानता था कि दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया, बोला, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि पद्मिनी के महल के फाटक पर वो दोनों पहुंच गए। वहां एक हृष्ट पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात ही बात में मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफ़ेद बाल जलाया। सफ़ेद देव सामने आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ, बारात सजा कर लाऊँ। जरा ही देर में सफ़ेद देव अपने साथ बड़ी शानदार बारात सजा कर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान और शौकत से ब्याहने आ रहा है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना भी नष्ट कर डाली है, तो उसने चूं तक ना की और राजकुमारी का ब्याह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में ही उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। उसके बाद परी रानी के बगीचे में आ गया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ये तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार करना। परी रानी गदगद कंठ से बोली, राजकुमार तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम उसकी छोटी बहनें। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गई। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम से राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई।
अभी आपने सुनी उत्तर प्रदेश की लोक कथा सिंघल द्वीप की पद्मिनी। संकलनकर्ता थे आदर्श कुमारी। ऑडियो प्रस्तुति
रेडियो अर्पण।